शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। कुछ दिनों से बाबा की जो मूलियां चल रही है उसके ही कंटिन्यूएशन में आज की भी मुरली है, गेटवे टू हेवन। ये जब मुरलियां हम पढ़ रहे हैं तो वो दृश्य याद आ जाता है, 1965 होगा जब नई एग्जीबिशन बनी थी पहली बार, तो विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ये तो नाम रखा था लेकिन बड़ा लंबा नाम था। तब बाबा से पूछा गया, बाबा क्या नाम दे, क्या नाम दे, ये एग्जीबिशन बनाई है, चित्र प्रदर्शनी बनाई है, क्या नाम दे। तो उस दिन भी बाबा ने कई नाम सुझाए, उस दिन की जो मुरली थी, कल भी बाबा ने कहा, परसों भी कहा, तो फिर आखिर यही फाइनल हुआ नाम, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग में जाने का द्वार। तो क्योंकि उस समय जो हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाई थी वो एक बहुत सुंदर स्थान पर लगाई थी, जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई का एक बहुत बड़ा प्रख्यात स्थान है जहांगीर आर्ट गैलरी, जहां पर आर्ट एग्जीबिशंस लगती है, बड़े बड़े आर्टिस्ट अपनी अपनी एग्जीबिशंस वहां लगाते हैं। तो उस स्थान पर हमारी एग्जीबिशन लगनी थी, तब बाबा से नाम पूछा कि हम क्या लिखे हेडिंग जो आकर्षित हो लो। तब बाबा ने फाइनल कहा कि अच्छा है, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग के में जाने का द्वार। तो आप देखेंगे ये जब म्यूजियम बना तभी भी वहां ऊपर लिखा हुआ है गेटवे टू हेवन या पैराडाइज, तो गेटवे। तो आज की मुरली सारी इसी पर है, बाबा को ये पसंद आया ये जो शब्द है। तो बाबा का फिर विचार सागर मंथन चला कि सच्चा गेटवे टू हेवन कहाँ है, कौन से चित्र में है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से तुम सतयुग में जा सकते हो। तो बच्चों से पूछा गया तो फिर फाइनल यही बाबा ने बताया, ये गोला सृष्टि चक्र, इस सृष्टि चक्र से ही गेट का पता चलता है, क्योंकि संगम दिखाया है और फिर ऐसे सब आत्माएं वापस जा रही है, वो भी इस चित्र में दिखाया है। तो एग्जिट है फिर एंट्री है, तो गेट होता है माना एक होता है जाने का गेट, एक होता है आने का गेट। तो एंट्री और एग्जिट, आना और जाना, ये दोनों इस गोले के चित्र में बहुत स्पष्ट है। तो बहुत सुंदर रूप से इसमें दर्शाया गया संगम, तो कैसे आत्माएं वापस जा रही है। तो बाबा को ये पसंद आया और उसमें भी फिर त्रिमूर्ति नीचे गोला, और फिर जो आपने हिस्ट्री हॉल में देखा होगा दो तरफ गोले हैं, एक है नरक का गोला एक है स्वर्ग का गोला, तो दो गोले हैं और ऊपर त्रिमूर्ति और नीचे सृष्टि चक्र। तो बाबा ने कहा ये चित्र सबसे अच्छा है, बाबा को बहुत पसंद आया, क्योंकि फिर एग्जीबिशन में हम नर्क भी दिखाते हैं, फिर संगम भी दिखाते हैं, फिर स्वर्ग भी दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं। तो बाबा को बहुत पसंद आया और उसी समय बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा आप आकर के देखो एग्जीबिशन कैसे सजाई है, कैसे लोग आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा तो नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें शिव बाबा की प्रवेशता है, लेकिन आप ये सारी एग्जीबिशन माउंट आबू ले आओ। तो उसी समय ये एग्जीबिशन फिर माउंट आबू लेके गए, और जहां अपना म्यूजियम है उसके सामने वो खाली जमीन थी, वहां पर ही वो एग्जीबिशन लगाई और बाबा देखने गए थे। तब बाबा की नजर उस स्थान पर पड़ी जो अभी अपना म्यूजियम है, वो होटल था। तब बाबा ने रमेश भाई को कहा कि इनका ओनर कौन है, इससे पूछो तो हम यहाँ परमानेंट रख सकते हैं। तो क्योंकि वो टूरिस्ट आते हैं, तब ये सारी बातें चली और बाबा का बहुत सुंदर म्यूजियम माउंट आबू में बना, तो ये सारी मुरली उसी पर है। तो वही जो आपको बैकग्राउंड बताया, हम भी उसी समय थे, कैसे कितना कितने दिनों तक हमारी सब वरिष्ठ बहनें, दादी दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ये सब बॉम्बे में ही रहते थे, वो सब बैठ करके विचार सागर मंथन करते थे कि कैसे ये ज्ञान चित्रों से दिया जाए। उसके पहले कोई एग्जीबिशन नहीं होती थी, बस दो ही चित्र थे, त्रिमूर्ति गोला एक चित्र में और दूसरा झाड़, और कुछ भी नहीं था। तो कैसे ये इन्वेंट किया, तो आज तो देखो बड़े बड़े म्यूजियम्स बन गए हैं, कितने चित्र हैं, कि बाबा का ज्ञान कितना स्पष्ट हो गया है। तो ये उस समय की मुरली है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 3/4/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है, और मीठा झाड़ है तो क्या होता है, इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। मीठी चीज में चींटियां घुस जाती है ना, कोई भी मीठा होता है तो उसको जल्दी कीड़े लगते हैं। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है। कीड़ों को कैसे समाप्त करें, कौन से कीड़े लगते हैं, विकारों के कीड़े, तो इन कीड़ों को समाप्त करने की दवाई कौन सी है, मन मना भाव, बाबा की याद। बाबा की याद से ही ये विकार खत्म होंगे। तो मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है, इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि ये पास विद ऑनर होगा, ये स्टूडेंट उसकी निशानी क्या होगी। उत्तर, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देगा, ज्ञान योग धारणा सेवा, फिर मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, हाँ ये सब है ना, भिन्न भिन्न रूप, तो इन सब पर वो ध्यान देगा, तब वो पास विद ऑनर हो सकता है। तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देगा। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है ना, कोई कहे मैं तो केवल भाषण करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो केवल क्लास कराती हूँ, नहीं स्थूल सेवा भी बहुत जरूरी है। तो बाबा ने किसको याद किया होगा जो बहुत स्थूल सेवा करती थी, हमारी भोली दादी को। सारा दिन आप लोगों ने भी देखा होगा जो पुरानी हम किचन में बैठी रहती थी, रात को 12 बजे भी वहीं होती थी, वहीं सोती थी, जैसे बैठे बैठे सोती थी। और कोई आ जाता था, हाँ दादी हम अभी आए हैं, मुझे कुछ खाने को दो, रात को 12 बजे, तो दादी कहती थी हाँ हाँ अच्छा क्यों नहीं क्यों नहीं, उसी समय उठ करके कुछ न कुछ सब्जी रोटी कुछ बना लेती थी अगर नहीं होता था तो। तो इसीलिए वो स्थूल काम में बहुत बहुत होशियार थी सेवा में। तो बाबा उनको कहते थे बच्चे मुरली में आओ, वो कहती थी कैसे आऊं बाबा इतना काम होता है ये होता है, तो मुरली में नहीं आती थी, वहीं बैठे बैठे सुनती थी किचन में। तो बाबा कहते थे देखो ये एक सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी है लेकिन फिर ज्ञान भी चाहिए, योग तो बहुत लगाती थी, धारणा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुरली जरूर पढ़नी है, मुरली जरूर सुननी है, क्लास में जरूर आना, तो ये जरूर बाबा कहते थे, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो बाबा ने दादी को बहुत याद किया, और उसकी विशेषता थी बहुत ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट। कोई उनको कोई चीज देता था ना, क्योंकि आकर के दादी को देते थे, बहुत प्यार देती थी दादी सबको, तो उनको देते थे गिफ्ट देती थी, वो कहती थी मैं नहीं लूंगी अब बाबा को दो बाबा को दो, तो वो फिर भी जबरदस्ती देके जाते थे, तो वो बाबा के पास ले आती थी, बाबा हाँ दादी जी भी थे तो दादी जी को देती थी, मैंने तो कई बार देखा वो दादी को आके देती थी, दादी ये मेरे को गिफ्ट देके गए हम, तो दादी कहती थी रखो ना, नहीं 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 दादी बाप में ये आत्मा याद आएगी अगर मैं इसको रखूंगी तो ये यज्ञ में डालो, तो इतनी उसमें ऑनेस्टी थी। तो बाबा भी उनको कहते थे ये बहुत ऑनेस्ट बच्ची है, ये कहती है बाबा मैं क्यों लूं, हाँ ये आत्मा याद आएगी अगर आप पहनूंगी या कुछ करूंगी, इसलिए बाबा आप ही दो। फिर बाबा उनको कह देते थे, बाबा बच्ची हाँ बाबा देते हैं आपको, तब वो लेती थी, नहीं तो नहीं लेती थी। तो वो भी बाबा ने वर्णन किया है। तो बाबा के तो पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। अब चलन है नहीं ठीक, और बस केवल स्थूल सेवा है, तो बाबा कहते चलन भी अच्छी चाहिए, दैवी गुण पर भी पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, बहुत सुंदर गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी, उल्फत माना प्यार, तो न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी, लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो ये फांस माना ऐसे अंदर में वो पकड़ा हुआ है कि ये उल्फत प्यार बाबा से कभी कम नहीं होगा। बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति, ओम शांति। अब बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? इतनी दिल लगी हुई है अंदर, वो दिल जो लगी हुई है वो इतनी घर कर गई है जो वो कभी निकलेगी नहीं। तो बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से, गाइड से। बाबा गाइड है ना सबको घर ले जाने वाला, तो बाबा को वही गेट वे टू हेवन याद आया। वो गाइड हमको घर भी ले जाएगा फिर हेवन में भी भेजेगा। गाइड से, गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। तो बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना, हेवन का फाटक कौन खोलता है और कब? हेवन का दरवाजा कौन खोलता है और कब खोलता है? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहनी चाहिए, हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं, तो बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में से कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट। तो फिर कईयों ने कहा होगा, तो आखिर यही फाइनल हुआ, गोला, सृष्टि चक्र। तो गोला सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है, ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। संगम है ना, वो नरक का गेट वो स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम। इस चित्र में भाग रही है, ऊपर जा रही है आत्माएं, भाग रही है, उड़ रही है शांति धाम। सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। ये गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे, सारे चक्र को गेट नहीं कहेंगे क्योंकि बीच से तो आत्मा निकल ही नहीं सकती है। हाँ, एग्जिट गेट बंद है, एक बार सृष्टि मंच पर आ गई तो वापस तो बीच से जा नहीं सकती है, वो एंट्री गेट ही खुला है, तो एंट्री गेट से ही सब आ रही है अंदर सृष्टि चक्र में। हाँ, बाहर से बाहर तो निकल नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे, एक ही एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है ही नहीं जो जा सके। तो सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे, ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वो है पूरा गेट जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है, बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है, दिखाया है ना, कांटा 12 बजने में अभी कितने मिनट पड़े हैं। तो कांटा दिखाते हैं ना, ये नरक है ये स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है, गेट वे टू हेवन। ये बुद्धि से समझने की बात है ना, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, सृष्टि चक्र के चित्र में गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है, इसमें नरक का द्वार स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे। कई कहते हैं ना, क्यों खाली एक ही देवी देवता धर्म ही स्वर्ग में जाएगा, कभी ये धर्म जाए कभी वो धर्म जाए, हर कल्प में अलग अलग कोई धर्म जाए, खाली एक ही धर्म क्यों जाएगा? तो बाबा उसका उत्तर देते हैं, स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे। पिछले कल्प में जो गए थे स्वर्ग में वही फिर स्वर्ग में जाएंगे, नहीं दूसरे धर्म वाले जाएंगे, बाकी तो सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो शांति और सुख का द्वार खुलता है, फिर नरक में नहीं आएंगे। हाँ, शांति द्वार में जाएंगे फिर सुख द्वार में जाएंगे फिर नरक में नहीं आएंगे, तो नरक का द्वार बंद हो जाता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति दो गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति ऊपर, सृष्टि चक्र नीचे और दो गोले, एक नरक का एक स्वर्ग का, ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का ये गेट है, ये नरक ये स्वर्ग। नरक का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। नरक का विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे और बाकी सब कहाँ जाएंगे? शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है, स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, सभी तो नहीं जाएंगे। वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था, तो तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। क्या है हम सबकी बुद्धि में कि हम स्वर्ग द्वार जाने के लिए लायक बन रहे हैं? जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, पढ़ाई पर ध्यान होगा तो होंगे नवाब, रुलेंगे पिनेंगे, पिलेंगे नहीं पिनेंगे, ये सिंधी शब्द है पिनेंगे। पिनना माना भीख मांगना, घूमते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं, आप मेहनत नहीं करते काम नहीं करते तो बाबा का ज्ञान सुनते नहीं है, बस इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर की बातें ही सुनते हैं सोचते हैं देखते हैं बुद्धि में लाते हैं, तो पिनेंगे माना फिर भीख मांगेंगे। क्या कहा बाबा ने, क्या कहा रे भाई तुम क्यों नहीं मुरली सुनते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो, हाँ क्या कहा पूछते हैं। तो बाबा के पिनना माना भीख मांगना, इतना बाबा हमें दे रहे हैं तो सब खुद धारण करना होता है ना। तो बाबा कहते हैं रुलेंगे पिनेंगे तो होंगे खराब, खाली पूछते रहेंगे तो थोड़ी होगा कुछ। बाबा जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन खुद करना चाहिए। रोज हमको कोई ना कोई दो तीन जने मिलते हैं, रोज रोज, और कहेंगे बहन जी बाबा को कैसे याद करें, हाँ बाबा को कैसे याद करें, अरे भाई बाबा को कैसे याद करें, कि बाबा की हर मुरली में आता है कैसे याद करो, तो भी पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं तो मुरली को ध्यान से सुनो, मुरली को स्टडी करो, मुरली का पर विचार सागर मंथन करो, तो हर बात अपने आप समझ में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिनेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, तो बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है, एक बार ये चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलना चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, बाबा को पसंद आया ये अक्षर। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है, सो सत्यों की जो भाषा होगी वो हिंदी थोड़ी होगी, वो देवनागरी होगी, देवताओं की भाषा है। लेकिन वो देवनागरी देवताएं ही खत्म हो गए तो फिर उसको हिंदी शब्द कह दिया, सिंध सिंधु नदी के किनारे बसे तो फिर सिंधु से हिंदू हो गया हिंदू, क्योंकि हिंद उस दिन भी बाबा ने कहा सिंध सरस्वती, तो सिंध में ये जो सिंधु नदी थी वो सिंधु नदी को सरस्वती नदी भी कहते थे, इसलिए सिंध सरस्वती उसका नाम पड़ा, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था। तो बाबा कहते हैं पर सिंध स शब्द नहीं बोल सके तो फारसी में स को ह कर दिया, तो इसलिए हिंद नाम पड़ गया। तो हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत है, भारत खंड कहते हैं ना, ये तो गलियों आदि के नाम बदलते जाते हैं, खंड का नाम कैसे बदल गया, कहा भारत नाम जो ओरिजिनल नाम है वो बदल करके हिंदुस्तान नाम पड़ गया, इंडिया नाम पड़ गया, क्योंकि इंडस अंग्रेज आए तो इंडस वैली का इंडस है, हिंद नहीं कह सके तो इंडस कह दिया, फिर इंडस से इंडिया शब्द आ गया, तो असली नाम तो हमारा भारत है। तो बाबा कहते हैं तो खंड का नाम थोड़ी बदल जाता है, महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है, गाते भी हैं भारत हमारा देश है, हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है, असली नाम तो देवताओं की भाषा है देवनागरी, है हिंदी की तरह ही देवनागरी भी लिखते हैं वो है, परंतु हिंदी नहीं है वो देवनागरी है। तो हिंदू के धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है, ये है अनराइटियस, सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना सच खाना सच बोलना, यहाँ सब झूठ हो गया है, तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है, चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताते हैं, चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताते हैं, अंदर ले आओ एग्जीबिशन में, कितनी भाषाएं हो गई है, बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं, बाप की मत के लिए गायन है उनकी गत मत न्यारी, तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं, भगवान की श्री मत पर ही तुमको चलना है, भगवान की श्री मत पर ही तुमको चलना है, डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर प्रोफेसर होता है वो डॉक्टर तो होता है ना, ऐसे थोड़ी प्रोफेसर बन गए आप मेडिसिन पढ़ाएगा तो वो डॉक्टर भी होता है, तो डॉक्टर की मत पर चलेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, और भगवान की मत पर चलेंगे तो क्या बनेंगे, भगवान की मत पर चलेंगे तो भगवान भगवती बनेंगे, तो भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है ना, है भी भगवानो वाच, इसीलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है, गीता का भगवान कौन है ये भी सिद्ध करने से पहले भगवान किसको कहा जाता है ये सिद्ध करो, स्वर्ग का मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे, फिर वो गेट वे टू हेवन, हेवन में ले जाता है भगवान, तो वो तो हेवन में कौन रहेंगे, भगवान भगवती रहेंगे, तो स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं ना, ब्रह्म में थोड़ी स्वर्ग रखा है, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ है नरक भी यहाँ होता है, स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, क्योंकि दुनिया में ये समझते हैं यही स्वर्ग है यही नरक है, अभी अभी स्वर्ग है अभी अभी नरक है, नहीं ये दो अलग चीज है, भले एक ही स्थान पर है लेकिन अलग अलग समय पर है, दिन और रात दोनों एक समय पर थोड़ी होते हैं, दिन का समय अलग रात का समय अलग, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों बिल्कुल न्यारे है यहाँ ही लेकिन बिल्कुल न्यारे हैं, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है, सत्यों को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए फिर कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, विनाश होने में अंत होने में कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े और सतयुग कब था, लाखों साल पहले। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। भगवान हमें ऐसा गुणवान लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं स्वर्ग में ले जाने लिए। तो मुख्य पूर्णा ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। तो बाप ने बताया है माम एकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। कैसे याद करे, कैसे याद करे पूछो नहीं। बाबा मिसाल देते आशिक माशूक का, कैसे आशिक अपने माशूक को याद करती रहती है, कुछ भी काम करेगी वो माशूक उसका वो माशूक का चित्र उनके सामने आ जाता है, फोटो आ जाता है, जैसे उसके साथ बात कर रहा है वो उसके साथ बात कर रही है। कल भी किसी ने मेरे से कहा कैसे याद करें, हमने कहा बस बाबा से बातें करो और क्या करो, कुछ भी हो बाबा से बातें करो, और उससे जैसे बातें करते उसकी वजह बाबा से बातें करो, फिर भी बाबा की याद है ना, तो बाबा से कैसे बातें करनी होती है। तो हमने कहा मनुष्यों से कैसे बातें करते हो, अब सब संबंध बाबा से है तो बाबा से बातें करो, यही तो याद है। सामने लाओ बाबा कैसे वो बिंदु रूप है, याद करो, क्यों नहीं याद करो, ब्रह्मा द्वारा भी याद कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, कर्म छोड़ के थोड़ी एक दो को याद करते हैं, कर्म करते भी एक दो को याद करते हैं। भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी भगवान को याद करते हैं तो कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए फिर माला फेरते हैं, माला भी हाथ में फेरेंगे और फिर कुछ न कुछ करते भी रहते हैं। याद करने के लिए माला फेरते हैं, बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे, अब सब जगह वही है तो किसको याद करेंगे, वो तो एक है तब तो याद कर सकेंगे। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। तो बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो। नास्तिक का मतलब बाबा अर्थ बताते, नास्तिक माना वो नहीं कि जो नहीं मानते हैं, लेकिन नास्तिक वो जो नहीं जानते हैं, मानते तो क्यों नहीं है लेकिन जानते नहीं है तो नास्तिक है। बाप समझाते तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वो है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा माना परम आत्मा सुप्रीम। वो सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचा सुप्रीम सोल परम आत्मा, एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा हूं ये शरीर है तो ये दो चीज हो गई ना, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वो क्या चीज से बनेगी। अब कोई कहे कि आत्मा बिंदी है वो किस चीज से बनी है, अब आत्मा भी अगर बनी हो तो किस चीज से बनेगी, कोई प्रकृति की चीज से थोड़ी बनेगी, प्रकृति के चीज से बनेगी तो फिर नष्ट भी हो जाएगी। तो आत्मा तो प्रकृति है ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व तो अनादि अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं इस वो क्या चीज से बनेगी, क्या कोई चीज होगी क्या जिससे आत्मा बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, बाबा ने बहुत गुरु किए, ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या ये सचमुच किसी को नहीं पता। एक आया था जब हम लोगों ने गीता का भगवान इस पर एक बहुत बड़ी वो कंपटीशन रखी थी लिखने के लिए, गीता का भगवान कौन, रमेश भाई ने ये बहुत बड़ी कंपटीशन रखी थी। तो एक व्यक्ति को लिखना था, बड़ा स्कॉलर था, बहुत बड़ा स्कॉलर, तो उसने हमारी सारी किताबें पढ़ डाली, लेकिन उसके पहले वो सेंटर पर आया था और एग्जीबिशन देखिए, एक छोटी सी बच्ची ने उनको एग्जीबिशन समझाई, बड़ा स्कॉलर, संस्कृत कॉलेज का वो प्रिंसिपल था, तो आत्मा की चित्र पर ले गई और वो सरल शब्दों में कहा आत्मा क्या है, आत्मा ज्योति बिंदु है, मन बुद्धि संस्कार सहित है, आत्मा ड्राइवर है, चित्र में ना ये शरीर गाड़ी है आदि आदि, इतना सहज करके समझाया उस व्यक्ति की तो आंखें खुल गई, आत्मा ऐसे होती, आत्मा ये है। तो उसने कहा 50 साल से मैं ढूंढ रहा था आत्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, लेकिन हमको कहीं भी कुछ नहीं मिला, और ये छोटी बच्ची ने मेरी आंखें खोल दी। उनसे वो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आया, जो कंपटीशन रखी थी गीता का, भगवान कौन यहाँ आया था इसी ओम शांति भवन में उसने ये भाषण दिया था। तो बाबा, और वो कौन था, मेरी अस्मिता बहन है ना कलकत्ता की, उसका दादा, उसका नाना था, वो बहुत बड़ा स्कॉलर था। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो आत्मा क्या चीज है, परम पिता परमात्मा क्या है, कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फिर से जान जाए, क्योंकि आत्मा को जान जाए तो परमात्मा भी तो एक आत्मा ही है, तो क्यों नहीं परमात्मा को फट जान जाएंगे, तो परमात्मा को भी फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते, अपना परिचय भी तो, बच्चे का परिचय भी तो बाप ही देगा ना, तो बाप को भी तो जानेगा ना, खाली अपने को थोड़ी जानेगा, तो अपने को जाना मैंने बाप को भी जाना, क्योंकि पिता भी तो बच्चे जैसा ही है। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते, तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वो सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती है, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। कोशिश की थी, रशिया में कोशिश की गई थी, या कैसे कहते, वो अभी मरा नहीं था, लेकिन उसको बस मरने की स्थिति थी, और उसको एक शीशे के अंदर डाल दिया, बंद शीशे में, और मर गया अंदर। तो फिर वो शीशा देखा तो उसमें क्रैक था, तो क्रैक था का इससे निकल गई वो आत्मा, निकल गई, फिर का कोई गैसेस थे जो निकल गई और वो मर गया। तो गैसेस तो बाबा कहते नहीं, ये तो आत्मा निकल गई, पर आत्मा को देख कैसे सकते, ये आंखें तो देख नहीं सकती, क्योंकि ये आंखें तो प्रकृति की चीज देखेगी, आत्मा प्राकृतिक तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं, डॉक्टर लोग भी इतना समझते वो सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है, तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है, वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, हाँ वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं फिर पतित बनते हैं, परमधाम में सब पावन है, फिर वहां से पावन आते हैं यहाँ फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहजते सहज बात है, सहजते सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है, हम भी 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है, एक ने नहीं 84 जन्म लिया, अनेक लेते हैं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो, सुना बाबा ने आप क्या कहा, मैं समझाता इनको हूँ, ब्रह्मा को, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, लेकिन सुनते तो सब है ना, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्म तो लिए हैं, सुनते तुम हो, मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो, ये है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे है। झाड़ के हिसाब से जो थुर है, जो तना है, वो तो देवी देवता धर्म है, बाकी सब धर्म पीछे आते हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। हाँ, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। अब इसको टर्न मिला, अगले कल्प में दूसरे को टर्न मिलेगा, तीसरे कल्प में तीसरे को टर्न मिलेगा। बाबा कहते ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, ये तो अनादि खेल बना हुआ है ना। जो कल्प पहले सतयुग में आए थे वही आएंगे, ऐसे थोड़ी दूसरे कल्प में दूसरे धर्म वाले आएंगे। ये ऐसे तो नहीं बनता कि ये अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है, तो घर कैसे जाएंगे? तमो प्रधान आत्मा तो घर जा नहीं सकती, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हाँ, न घर जा सकेगी तमो प्रधान आत्मा, न स्वर्ग में जा सकेगी तमो प्रधान आत्मा। इसके लिए तो सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। तो बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवान ने वाच लिखा हुआ है, ये भी सब कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, क्राइस्ट के 3000 साल पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, ये कोई भी जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़ी जानते थे। बाबा का ज्ञान मिलने से पहले ये बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है, क्या नहीं पता, कि आत्मा ही अच्छी या बुरी बनती है। वो तो ये कहते थे आत्मा पर तो कोई लेपछेप लगता ही नहीं, आत्मा तो सदा ही पावन है। तो बाबा कहते ये भी नहीं जानते कि आत्मा ही अच्छी और बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वो माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है। चिवावा बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं? बहुत मीठा है तभी तो सारी दुनिया उस माशूक को याद करती है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। हर धर्म वाले अपने अपने रूप से याद तो करते हैं, ओ गॉड, हे भगवान, हे अल्लाह, ओ खुदा, याद तो करते हैं ना। तो जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे, अपनी आत्मा को हम ही पूजने लगे, हम ही पूज्य थे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, जैसे पूजा करते रहते ना, तो वो पूर्व जन्म में वो लौकिक ब्राह्मण तो ऐसे ही करते, पूजा करते, यज्ञ रिश्ते हैं तो शिवलिंग बनाएंगे, फिर शालिग्राम भी बनाते हैं। श्रीनाथ का भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग ही है। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है कि स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगा। अब भगवान कैसे खोले फाटक, कैसे ये समझाए, तो समझाने के लिए भी शरीर चाहिए बाबा को, शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं भगवान वाच है तो तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगा, होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है, ये बाबा रोजगारी बातें बताते हैं। बाकी नटशेल में तो बाबा यही कहेंगे, आत्मा समझ मुझे याद कर, बाकी रोजगारी बातें तो बहुत है। ये बाबा रोजगारी बातें बताते हैं, बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाता है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। हाँ, वैसे भी नया होता है ना, पौधे के जो पत्ते होते हैं वो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो खाते हैं जानवर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। तो बाप ने भी ये मन मना भाव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भाव न होने से कीड़े खा जाते हैं। अगर बाबा की याद नहीं है तो कीड़े खा जाएंगे। कौन से कीड़े? ये विकारों के कीड़े। मन मना भाव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? अब कोई चीज में कीड़े पड़ गए हो तो वो थोड़ी खाएंगे, कैसे खाएंगे? तो कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वो तो फेंकी जाती है, तो कीड़े पड़ गए फेंक दो उसको, वो तो फेंकी जाती है। तो कहां ऊंच पद और कहां नीच पद? कीड़े लग गए, विकार आ गए, तो क्या पद पाएंगे? नीच पद पाएंगे, वो कोई काम के नहीं रहे अगर कीड़े लग गए हैं तो। कहां ऊंच पद कहां नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे बहुत मीठा बनो, हाँ बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, खीर खंड बनो। वहां शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तकदीर भी क्या करे, पोषाते नहीं करेगा खीर खंड बनने का, मीठा बनने का, कड़वाई बोल निकलते रहते हैं मुख से। तो कोई की तकदीर में नहीं है तो तकदीर भी क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं, तकदीर ऊंच बनानी, टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते हो, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में कितना फर्क पड़ जाता है, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है, स्थूल सर्विस के भी सब्जेक्ट है ना, स्थूल सर्विस के भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बाबा भोली दादी को याद करते, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है। देखा था भोली दादी को, जिन्होंने देखा था हाथ उठाओ, हाँ बहुत होंगे पुराने पुराने, पता नहीं किस समय ने शरीर छोड़ा उसने, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, हाँ देखो पता है। हाँ तो जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। पहले तो आते ही पहले भोली दादी को याद करेंगे और सबको बाद में भोली दादी का है। तो वो कुछ न कुछ ले आते थे, कुछ न कुछ किचन के लिए ले आते थे, तो भोली दादी को याद करते थे। तो बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। अब ये तो ठीक है, सब याद करते हैं क्योंकि वो सेवा करती है बहुत, सबको मीठी लगती है, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स तो मिलती है, बाबा को लगता है ठीक है, लेकिन फिर बाबा लेकिन भी कहते हैं, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट्स में पूरा ध्यान देना है, खाली सेवा 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 बस इतना ही नहीं। कई कहते हैं बस क्या करूं, सेवा ही करनी पड़ती है, सेवा अरे सेवा है तो क्या ज्ञान योग नहीं है क्या? ब्राह्मण बनिए तो ज्ञान योग भी तो चाहिए, और कई फिर केवल ज्ञान योग सेवा तो कुछ भी नहीं, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है, सब सब्जेक्ट्स में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना हो, अब कोई जाए भोली दादी के पास, भोली दादी की महिमा तो बहुत सब करते थे, पर भोली दादी बहुत स्वीट, मेरी मेरी महिमा मत करो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, ये कहती रहती थी, बाबा को याद करो। कोई आए तो कई मन मना भाव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, वैसे वो कहे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही यह। अंधों की लाठी बनना है, प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। प्रदर्शनी में ले जाओ और कहो चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, ये नर्क है ये स्वर्ग है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव, हूँ बहू तुमको गीता सुनाते हैं। हाँ, वो बहु कल पहले जैसे सुनाई थी गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का, भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता है शिव बाबा। कौन खोलता है स्वर्ग का गेट? शिव बाबा। और श्री कृष्ण उस गेट से पास होता है। देखो हाँ, कितना अंतर हो गया। खोलता है गेट स्वर्ग का शिव बाबा, लेकिन उस गेट से पास होता है स्वर्ग में जाने लिए वो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। तो मुख्य चित्र है ही ये, है ही दो, बाकी तो रेस गाड़ी है, त्रिमूर्ति गोला और झाड़, बस ये ही मुख्य चित्र है, बाकी सब है रेस गाड़ी। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा करना, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। अब ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं, फिर वो क्या कहती है उसको, जब उनको सौगात देते हैं, दादी ये आपके लिए, ये स्वेटर आपके लिए, दादी आपको पहनना है, तो दादी क्या कहती थी, सौगात आकर देते हैं वो कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी, लेकिन वो जबरदस्ती दे जाते थे, फिर वो आकर के बाबा को देती थी, दादी को भी देती थी, मुझे भी याद है, दादी के सामने ले आई, बोली दादी दादी ये मेरे को सौगात मिली है, दादी कहती तो रखो ना, अच्छा है रखो, नहीं दादी मैं नहीं लूंगी, ये अगर मैं पहनूंगी तो मुझे वो आत्मा याद आएगी, मुझे तो बाबा को याद करना है, इतनी महानता थी। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी, ऐसे कहती थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है, कभी लूं पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी बाबा, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी बाबा। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना, आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले ने चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धर्मी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन: बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्तिशारी, हाँ, इस महीने का अव्यक्तिशारी का थीम है कंबाइंड रोग की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो हर अव्यक्तिशारा कंबाइंड रूप के रूप में आएगा। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। कर्म और योग को अलग मत करो, दोनों को जुड़ा हुआ रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। अभी तो डबल विदेशी भाई बहनी तो लगभग जा रहे हैं, आज भी सब काफी जा रहे हैं। डबल विदेशी भाई बहनी आ तो जाएंगे।